ప్రభుపాదికి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందికి నమాచార్ శిలదాస్ ఠాకూర్కి తాయి గోర్ ప్రేమానందే శీల ప్రభుపాదికి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వత దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పశ్చాత్ దేశతారిణే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్తి బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంధ 10 అధ్యాయ 7 శ్లోక సంఖ్య 32. కిం న తపః చరణం అధోక్షజ అర్చనం పూర్త ఇష్ట దత్తం భూత్సౌహృదం యత్ సంపరేత పునయేవ బాలక దిష్టయా స్వబంధం ప్రణయన్ ఉపస్థిత. కిం నస్తపః చరణ మధోక్షజర్చనం. కిం నస్తపః చరణ మధోక్షజర్చనం. పూర్తేష్ట దత్తం ఉత్భూత సహృదం. పూర్తేష్ట దత్తం ఉత్భూత సహృదం యస్సం పరేతః పునరేవ బాలకో దిష్ట్యా స్వబంధున్ ప్రణయన్ ఉపస్థితః. కిం న తపః చరణ మధోక్షజార్చనం. పూర్తేష్ట దత్తం ఉత్భూత సహృదం యస్సం పరేతః పునరేవ బాలకో దిష్ట్యా స్వబంధున్ ప్రణయన్ ఉపస్థితః. కిం నస్తపః చరణ మధోక్షజార్చనం. పూర్తేష్ట దత్తం ఉత్భూత సౌహృదం યસમ પરેતઃ પુનરેવ બાલકો દિષ્ટ્યા સ્વબંધુન પ્રણયનુપસ્થિતઃ કિમ ન તપશ્ચિર્ણ મધોક્ષજર્શનમ પૂર્તેષ્ટ દત્તમ ઉતભૂત સૌહૃદમ યસમ પરેતઃ પુનરેવ બાલકો દિષ્ટ્યા સ્વબંધુન પ્રણયનુપસ્થિતઃ માતાજી શબ્દાર્થ કેમ કિસ તરહ કે ના હમારે દ્વારા તપહ તપસ્યા ચિરણમ દીર્ઘકાલ તક કી ગઈ અધોક્ષજા ભગવાન કે અર્ચનમ પૂજા પૂરતા સણકે બનવાના ઇત્યાદિ ઇષ્ટ ઇષ્ટ જનકલ્યાણકારી દત્તમ દાન દેના ઉત અથવા ઔર કુછ ભૂત સૌહૃદમ જનતા કે પ્રતિ પ્રેમ હોને સે જિસકે કારણ સંપરેતઃ મૃત્યુ કો પ્રાપ્ત હોને પર ભી પુનઃએવ ફિર સે અપને પુણ્યો કે કારણ બાલક બાલક દિષ્ટયા ભાગ્ય દ્વારા સ્વબંધન નિજી સંબંધીઓ કો પ્રણયન પ્રસન્ન કરને કે લીએ ઉપસ્થિત યહાં ઉપસ્થિત હૈ અનુવાદ એવમ તાત્વર શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ કે નંદ મહારાજ તથા અન્ય લોગો ને કહા હમને અવશ્ય હિ પૂર્વ જન્મ મે દીર્ઘ કાલ તક તપસ્યા કી હોગી ભગવાન કી પૂજા કી હોગી जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनवाकर पुण्य कर्म किए होंगे और दान भी दिया होगा, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया है। तात्पर्य, नंद महाराज ने पुष्टि की कि पुण्य कर्मों से मनुष्य साधु बन सकता है, जिससे वह घर में सुखी रह सकता है और उसके बाल बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। शास्त्र में कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए, विशेष रूप से कर्मियों के लिए अनेक आदेश हैं जिनसे वह पवित्र बन सकते हैं और भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि जनता के लाभ के लिए कार्य करे, यथा सड़कें बनवाए, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए जिससे लोग छाया में चल सकें, सार्वजनिक कुएं खुदवाए जिससे हर एक को बिना किसी कठिनाई के जल मिल सके। अपनी इच्छाओं को वश में रखने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह वह पवित्र बन सकता है और उसी के फलस्वरूप वह भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकता है। अनुवाद दोहराएंगे। नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा, हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या की होगी, भगवान की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनवाकर पुण्य कर्म किए होंगे और दान भी दिए होंगे, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया है। तो यह श्लोक में नंद महाराज तथा गोकुल के समस्त वासियों ने अपना हृदय का उद्गार व्यक्त किया है। महाबन में गोकुल महाबन में स्थित है, बृहद वन, वृंदावन के जमुना के दोनों तटों पर 12 वन हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर 7 वन हैं और पूर्वी तट पर 5 वन, ऐसा है ना? एक किनारे 5 वन हैं और एक किनारे 12 वन हैं, 12 वन हैं और उपवन 24 उपवन हैं। जैसे हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा जब जाते हैं तो वृंदावन से यात्रा चलती है, मथुरा जाते हैं, मथुरा से फिर मधुबन जाते हैं, मधुबन जहाँ वन था, सघन वन था, जहाँ ध्रुव महाराज तप किए थे, मधुबन है, ताल वन है, कुमुद वन है, बहुला वन है, भांडीर वन है, भाद्र वन है, कोकिल वन है, लोह वन है, खादिर वन है, अनेक वन है, काम वन, वृंदावन, ऐसे 12 वन है। तो यह बृहद वन की घटना है, महावन। अब जहां पर गोकुल स्थित है, गोकुल माने गायों का समूह, गो माने गाय, कुल माने समूह, इसलिए पूरे ब्रजमंडल को भी गोकुल कहा जाता है, ब्रज गोकुले। जहां गायें हैं, वृंदावन में गोकुल में क्या है, गायें हैं। और ब्रज का भी अर्थ यही होता है गायों का रुकने का जगह, ब्रज का मतलब होता है जहां गायें रुकती हैं। तो ऐसे महावन में, गोकुल में नंद महाराज जहाँ निवास करते हैं, जहाँ जो भूमि बहुत पवित्र है, गाय गोपियों से अलंकृत है, ऐसे गोकुल में एक दिन ऐसी घटना घटी। ऐसे कई घटनाएं पहले भी घट चुकी थी। तो श्लोक के संदर्भ में, इस श्लोक का संदर्भ यह है कि तृणावर्त जब भगवान को ले गया आकाश में, बहुत ऊंचाई पर ले गया था, और फिर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का इतना विस्तार किए, अपने शरीर का भार इतना विस्तार किए कि बहुत ऊंचाई से वो पत्थर पर धड़ाम से गिर गया वो तृणावर्त। पहले कृष्ण अपने को बहुत हल्का बनाए आकाश में कौतुक करने के लिए, आकाश में विहार कर रहे थे, जैसे लोग आकाश में पैराशूट से जाते हैं ना, पैराशूट बोलते हैं ना, हवा में खेलते हैं लोग, इससे जल में जल क्रीड़ा, वायु क्रीड़ा, स्थल क्रीड़ा, भगवान हर चीज का आनंद लिए, स्थल पर भी क्रीड़ा किए, जमुना में भी क्रीड़ा करेंगे, अभी तो बाल लीला है, अभी एक साल लगभग एक साल हुए हैं तो आकाश में क्रीड़ा किए, वायु के साथ खेल रहे थे। भगवान हमेशा ब्रज में कोई ना कोई क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं, कभी धूल में रमण रेती में रमण करते हैं, धूल में रमण करते हैं, जैसे गोकुल में भी रमण रहती है, वृंदावन में भी, कभी जमुना जी में जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा, तो यह भी भगवान का क्रीड़ा है, आनंद, क्योंकि भगवान आनंद घन मूर्ति हैं, ये कोई न कोई कार्य के द्वारा आनंद लेते हैं और आनंद प्रदान भी करते हैं। आनंद चिन्मय रस विग्रह है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए भगवान आनंद के रस घन मूर्ति हैं, इसलिए इस लीला के द्वारा आनंद लिए, आकाश में खेल रहे थे, और उसको जब गिरा दिए तो बहुत जोर से आवाज हुआ गोकुल में, नानु भूकंप आ गया है, ब्रजवासी लोग, नंद महाराज ब्रजवासी समझे कि अब वो बच्चा मर गया होगा, इतना ऊंचाई पर से गिरेगा तो मर ही जाएगा, लेकिन कृष्ण सकुशल थे, उनको खरोच भी नहीं आया था तो ब्रजवासी लोग उस आनंद, उनके आनंद की कोई सीमा न रही कि बालक बच गया है और राक्षस मर गया है, बहुत खुशी हुई, वो लोग अपना खुशी में अपने हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, नंद महाराज के साथ में सारे महाबन के गोकुल के वासियों ने बहुत उत्साह से अपने अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे, आपस में कह रहे थे कि शायद हम लोग पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य किए होंगे से तालाब कुएं खुदवाए होंगे, सड़क बनवाए होंगे, वृक्ष लगवाए होंगे, और भी अनेक पुण्य कार्य किए होंगे, दान दिए होंगे, पुण्य कार्य भी हमारे जीवन बहुत काम आता है, पुण्य से ही आदमी भक्ति में आता है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वासो नैव जायते, हम लोग रोज दो बार पढ़ते हैं, बहुत लोग नमो बोलते हैं, एक बार कोई भक्त पढ़ रहा था तो बोला था महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी, नमो नहीं है नाम, तो महाराज कहे कि नमो नहीं है नाम है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, रोज भक्त लोग पढ़ते हैं तो भी कुछ लोग बोलते हैं नमो नमो, क्या नमो नमो, याद तो कर लो, विचार करो, लोग रट लिए हैं वही बोलते रहते हैं, उसका मीनिंग भी जानना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग भी जानना चाहिए, क्या मीनिंग है, ये नहीं कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। रूपा जी लिखते हैं कि साधु बहुत सा तोता पाल कर रखा था अपने आश्रम में, पहले आश्रमों में लोग पशु पक्षी रखते थे, से गाय रखना, हाथी रखना, घोड़ा रखना, मयूर रखना, अनेक पक्षी लोग रखते थे, यहाँ भी હાથી ગાડે ને હાથી થા ગાય થી આશ્રમ મેં સબ જીવો કો રખા જતા હૈ તો સાધુ તોતા પાલ કર રખા થા તુમ લોગો કો ટ્રેનિંગ દિયા થા કે બહેલિયા આયેગા તો આપ લોગ અપના બચાવ કર સકતે હો કભી ચરને જાયેંગે તોતે ખોલ દેતા થા ચરને દાના ચુંગને કે લિયે ચલો કબૂતર પાલતે હૈ તો છોડ દેતે હૈ તો કબૂતર જાકર જંગલ મે યા ફિલ્ડ મે દાના ચુંગકર આ જાતે હૈ તો મહાત્મા ને ઉનકો ટ્રેનિંગ દિયા કે દેખો ભાઈ બહેલિયા આયેગા તો ક્યા કરેગા દાના ડાલેગા જાલ ભી બિછાયેગા લેકિન આપ લોગ લોભ સે મત જાના ઉસમેં બહેલિયા આયેગા જાલ બિછાયેગા દાના ડાલેગા લોભ સે ઉસમેં જાના મત સબ લોગો કો અપના પાઠ યાદ હો ગયા થા મહાત્મા જી પૂછે કે આપ લોગ હોમ વર્ક કરકે આયે હો તો સારે તોતે બોલે હા બહેલિયા આયેગા દાના ડાલેગા બહેલિયા આયેગા જાલ બિછાયેગા દાના ડાલેગા લોભ સે ફસના મત સબકો હોમવર્ક તૈયાર થા સબ લોગ પાઠ સુના દિયે મેમોરાઇઝ કર લિયે થે લેકિન ઉસકા મીનિંગ નહીં જાન રહે મીનિંગ નહીં સમજે હમ લોગ હી પઢતે થે તો રટ લેતે થે રટંત રટંત વિદ્યા રટ લેના અલગ બાત હૈ લેકિન ઉસકો સમજના ઉસકા સમજ ભી હોના ચાહિયે લેકિન નહીં સમજ ભી હોના ચાહિયે તો તો પુણ્ય કાર્ય જિસકે જીવન મે હોતે હૈ પુણ્ય કિયે હૈ વો લોગ ભક્તિ મે આતે હૈ નંદ મહારાજ ને પુષ્ટિ કી કે પુણ્ય કર્મો સે મનુષ્ય સાધુ બન સકતા હૈ કોઈ દુરાચારી હૈ પશુ ઘાતી હૈ પશુ જ્ઞાન આગોતા હૈ ના અગર પશુ ઘાતી વો લોગ જલ્દી નહીં ભક્તિ મે આતે હૈ જો બહુત અપને જીવન મે પાપ કિયા હૈ વો ઉનકો ભક્તિ મે મન નહીં રમતા હૈ જો પુણ્ય કિયે હૈ વિગત જન્મો મે યા વર્તમાન મે વહી લોગ વહી ઉન્હી કા મન જો હૈ મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મની વૈષ્ણવે આ જિનકે જીવન મે સ્વલ્પ પુણ્ય બહુત કમ પુણ્ય હૈ સ્વલ્પ અલ્પ મને થોડા આ સ્વલ્પ મને અત્યધિક થોડા એકદમ થોડા પુણ્ય હૈ સ્વલ્પ પુણ્યમતમ રાજન વિશ્વાસો નહીં વજાયતે ઉનકો વિશ્વાસ નહીં હોગા કિનકો વિશ્વાસ નહીં હોગા જિનકે પાસ સ્વલ્પ પુણ્ય હૈ બહુત કમ પુણ્ય હૈ જ્યાદા પાપ હૈ 99% પાપ કિયા હૈ તો વિશ્વાસો નહીં વજાયતે ઉસકો વિશ્વાસ નહીં હોગા કિસમે વિશ્વાસ નહીં હોગા મહાપ્રસાદે ગોવિંદે ગોવિંદ કે મહાપ્રસાદ મે ઉસકો વિશ્વાસ નહીં હોગા ઉનકે નામ મે બ્રહ્મની વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ મે ભક્તો મે શ્રદ્ધા નહીં હોગા ભગવાન મે ભગવાન કે પ્રસાદ મે ભગવાન કે ભક્તો મે ભગવાન સંબંધિત અન્ય જો ભી ક્રિયા હૈ ઉસમે ઉસકા મન નહીં લગેગા મંદિર મે ભક્ત બન ભી જાયેગા તો ભી એક શોર થા ભક્ત બન ગયા થા પ્રભુપાજી લિખતે હૈ પ્રભુપાજી એક લેક્ચર મે બોલ રહે હૈ કે એક શોર ભક્ત બન ગયા થા ની ભક્ત આશ્રમ મે જોઈન કર લિયા થા અબ ચોરી કરતા થા તો ઉસકી આદત નહીં જાતી થી તો રાત મે સબ ભક્ત લોગ સો જાતે થે તો કિસી કા કમંડલ હૈ ઝોલા હૈ ઇધર સે ઉધર કરતા થા ચોરી ગઈ લેકિન હેરા ફેરી નહીં ગઈ થી ઉસકી ઇનકા સામાન ઉનકે યહાં ઉનકા ચપ્પલ ઉનકે યહાં જબ સબ જગતે થે તો લડાઈ હોતી થી કે હમારા ચપ્પલ ક્યો લે ગયા હમારા કમંડલ ક્યો લે ગયા કોઈ જલ પાત્ર રખા હૈ કે સુબહ હમ જગેંગે તો જલ પાત્ર હી નહીં હૈ ઇધર કા ઉધર કર દેતા થા વો ભક્ત બન ગયા થા લેકિન ફિર ભી ઉસકા મન પૂર્ણ રૂપ સે શુદ્ધ નહીં હુઆ થા ચોરી છોડ દિયા થા લેકિન હેરા ફેરી જો હૈ કરતા થા ઇનકા ઝોલા વહાં છુપા દેતા કે લોગ ઝગડેંગે તો લડાઈ ભી હોતી થી કોણ એસા કર રહા હૈ તે એક દિન ઉસકો लेकिन भाई देखा जाए कि कौन ये काम कर रहा है, इधर कमाल उधर, इधर कमाल उधर। एक दिन उसको पकड़ लिए लोग, लिखते हैं क्यों ऐसा करता है, तो कहा कि मैं चोर था। चोरी तो छोड़ दिया लेकिन हेरा फेरी अभी नहीं गई। तो जो पुण्यात्मा है, जिसके जीवन में बहुत पुण्य किया है, तो वही लोग भक्ति में आते हैं, स्थिर होते हैं। तो नंद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि साधु बनने के लिए पुण्य चाहिए। नंद महाराज ने पुष्टि की कि पुण्य कर्मों से मनुष्य साधु बन सकता है। पुण्य कर्म है तो साधु बन सकता है, आ पुण्य नहीं, स्वल्प पुण्य उत्तम राजन विश्वास से नहीं भेजाते, स्वल्प पुण्य है तो उसको विश्वास नहीं होगा। और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गृहस्थ को ये पुण्य कार्य संपन्न करने चाहिए, जैसे सड़क बनवाना, वृक्ष लगवाना, कुआं खोदवाना, वृक्ष लगवाना, गरीबों को भोजन खिलाना, दान देना करना, जिससे उसका जीवन सुखी होगा और उसके बच्चे भी संस्कारवत्त होंगे, बच्चों में भी संस्कार आएगा और उसका जीवन इस लोक में भी अगले जीवन में भी वो सुखी हो सकता है। इसलिए भगवान गीता में कहे कि ये सब करना चाहिए, इसको करना ही चाहिए, नहीं कि केवल अपना भला, तो सब भला नहीं, अपने अपने के साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई खाने, किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है और हमारे पास बहुत कपड़े हैं, तो देना चाहिए। मारे कोई फटा पहना है, कोई गृहस्थ है बहुत फटा पुराना पहन कर आया है, कोई गृहस्थ देखा तो बोले आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो आइए मेरे पास बहुत कपड़े हैं, किसी को 100 जोड़ी कपड़े हैं, किसी किसी के अलमारी में 100 200 300 जोड़ी कपड़े पड़े हैं, तो बांट देना चाहिए, अति संग्रह नहीं करना चाहिए, उतना ही रखो जितना जरूरी है, ज्यादा है तो जरूरतमंद में बांटना चाहिए। बहुत भक्त लोग वृंदावन जाते हैं तो लेकर जाते हैं, ज्यादा कपड़ा है तो लेकर जाते हैं, वहां गरीब लोगों को, फुटपाथ पर रहने वालों को देते हैं, बांटना चाहिए। नया नहीं बांट सकते तो अपना उच्छिष्ट ही बांटिए, अपना पहना ही बांट दीजिए। मंदिर में भी भक्त लोग बांटते हैं, काम से देवकीनाथ प्रभु हैं, भीमा प्रभु हैं, ये लोग कपड़ा बांटते हैं, या वृंदावन कई बार भीमा प्रभु मुझे दिए हैं कि ये कपड़ा ले जाओ, वहाँ हम आएंगे तो बांटेंगे। बड़ा रूपा माता जी एक बार दी थी, मैं कई बार ले गया हूँ, अच्छे कपड़े हैं, काम लायक हैं, तो वहाँ लोग बांटते हैं, जरूरत लोगों को जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, तो ये सब पुण्य कार्य है, समझ गए। फलदार पेड़ लगवाना, पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है, पेड़ लगाएंगे तो छाया देगा, फल देता है, फूल देता है, उसकी लकड़ियां पत्तियां सब काम में आती हैं। कितने जीव जंतु फल खाते हैं, पक्षी हैं जो पेड़ पर आकर बसेरा करते हैं और फल भी खाते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ पर ही रहते हैं, और धूप हो तो छाया भी देता है। पेड़ लगाना भी बहुत पुण्य है, हम लोग सब लोग पेड़ काटते हैं, काटना बहुत ही, लेकिन लगाना बहुत श्रम है, पेड़ काटना बहुत बड़ा पाप है। पेड़ हो सके तो लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। से देवकिया प्रभु ने मैसेज भेजा था, पीपल का पेड़ जब गिर गया था तो उन्होंने बड़ा अच्छा भाव व्यक्त किया था, ये पीपल बहुत सुंदर था, बहुत छाया था, पीपल के पेड़ के नीचे जप करना, ध्यान करना, इसका बहुत महत्व है। पीपल के पेड़ के नीचे आप रहिए तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पीपल विष्णु का स्वरूप है, अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम, भगवान कहे ना मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष के यहाँ पाठ करने से, भक्ति करने से उसका महत्व बढ़ जाता है। किसी को मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी, तो पीपल के पेड़ के नीचे रहे, समय बिताए, बहुत लाभ होता है। पीपल में औषधीय गुण भी है, उसके पत्ती को जूस बनाकर पीने से दमा है, खांसी है, अनेक बीमारियां, लीवर की सैकड़ों बीमारियों की दवाई है। मैंने पढ़ा था बहुत सारी दवाइयां उसमें, सैकड़ों बीमारी की दवा है। तो पेड़ को जितना हो सके उसको रक्षा करना चाहिए और लगाना भी चाहिए। अनुत्तम प्रभु देख, मैंने देखा अनेक जगह से पेड़ मंगाते हैं और तलाशरी में भेजते हैं, रुद्राक्ष का पेड़ लगवाए हैं, अमरुद है, आम है, नेपाल से मंगाए थे बहुत सारा पेड़ अनुत्तम प्रभु, और तलाशरी में लगा है। कभी कभी वो लोग उसका फोटो उनको भेजते हैं, वो लोग तो देखते हैं। तो पेड़ लगाना ही चाहिए, आप लोगों को भी लगाना चाहिए। अभी कोई पेड़ लगाया तभी ना आप लोग फल खा रहे हो, तलाशरी से फल आता है, फूल आता है, तो कोई लगाया है तो आप लोग जाकर पिकनिक मनाकर ही मत आओ, वहाँ कुछ काम करके आओ। वहाँ जाओ तो खेती में काम करो, घास चुनो, वृक्ष लगाओ, कुछ करके आना चाहिए। यानी कि गए स्विमिंग पूल में नहा कर आ गए होगे, नहीं वहां गए अगर तो कुछ करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करना चाहिए। और जो काम करता है उसी का नाम होता है, समझ गए ना। तो तलाशरी में संकल्प लेकर जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो वहां कुछ करके आएंगे, कि याद रहेगा। पेड़ ही लगा दिए तो उसका फल कितने जीव जंतु खाएंगे, भक्त खाएंगे, भगवान को भोग अर्पण होगा, करना चाहिए। ये सब पुण्य कार्य हैं, हमारे जीवन में काम आता है। तो नंद महाराज ने अपना वही भाव व्यक्त किया है कि हम सभी गोकुलवासियों ने बहुत पुण्य किया है पूर्व जन्म में, कि पेड़ लगाया होगा, सड़क बनवाया होगा, दान दिया होगा, गरीबों को भोजन खिलाया होगा, वस्त्र दान किया होगा, इत्यादि बहुत सारे पुण्य कार्य हैं। किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाया होगा, बहुत ऐसे लोग हैं साथ में कोई जा रहा बीमार हो गया तो छोड़कर भाग जाते हैं, दो मित्र हैं साथ में जा रहे हैं और बीमार हो गया तो उसको छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कोई साथ में है बीमार हो गया तो उसको उसका इलाज करवाना या उसके घर में सूचना देना। दो मित्र थे, जा रहे थे ट्रेन में, तो एक मित्र ने कहा कि टिकट क्यों लेते हो, हम लोग डब्लू टी चलेंगे, डब्लू विथ टिकट और विदाउट टिकट दोनों होता है, बोलते हैं डब्लू टी विथ टिकट और विदाउट टिकट भी। तो एक ने टिकट ले लिया था, दूसरे का तुम टिकट मत लो, और संजोग से मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गया तो पकड़ा गया दूसरा वाला, और जो टिकट लिया था वो बच गया, तो जो टिकट नहीं लिया था वो जेल चला गया और वो भाग गया, जो पैसा पैसा भी रखा था दक्षिणा का, भाग गया, उसके घर में सूचना भी नहीं दिया, तो बाद में जब छूट कराया तो बहुत नाराज हो गया था वो, हम लोग से कह रहा था। और वो पकड़ा गया तो बचाना चाहिए था, फाइन वहां भर दिया होता तो वापस आ गया होता। तो किसी जरूरत व्यक्ति है, कोई बीमार हो गया रास्ते में, राहगीर है, बीमार हो गया है या प्यासा है, तो उसकी सहायता करना। वैदिक सभ्यता में मनुष्य को चाहिए कि जनता के लाभ के लिए कार्य करे। हमारा जो जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो दूसरे के लिए कार्य करना है। हमारा वैदिक समाज जो है दूसरे के हित के लिए कार्य करते थे लोग पहले के, जैसे हरिश्चंद, राजा हरिश्चंद दूसरे के लिए कार्य करते थे। शिवी एक बहुत बड़े राजा थे, दानी थे, अपने राज्य में पशु पक्षी सबको अपने प्रजा की तरह पालन करते थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे शिवी। उनके राज्य में सबकी सुरक्षा की गारंटी थी, पशु हो पक्षी हो पेड़ हो। राजा लोग जंगलों की भी रक्षा करते थे, पेड़ पौधों की भी। जंगल भी कटाई होता है तो उस पर नियंत्रण राजा लोग रखते हैं। अभी फॉरेस्ट विभाग सुरक्षा करता है, फिर भी लोग काट देते हैं जंगल को। हम लोग बचपन में गांव में देखते थे, अगर कोई जंगल से लकड़ी लेकर ला रहा है तो जंगली पुलिस दिखाई दे तो उसको 1 किलोमीटर दूर से ही फेंक कर भागते थे लोग डर से। जंगली पुलिस डंडा लिया रहता था। अब राइफल भी लेता है तो भी लोग नहीं भागते हैं। बचपन में हम लोग जंगल से एक बार लकड़ी ला रहे थे, एक आदमी दिखाई दिया, टोपी पहना हुआ था और जंगली सिपाही नहीं था। हम लोग छोड़ करके लकड़ी भागे, अरहर के खेत में छुप गए डर से, इतना डर होता था। कि आजकल जंगल में रहने वाले से पुलिस वाले डरते हैं। मैंने जंगल का भी सुरक्षा होना चाहिए, अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं। तो महाराज शिवी के राज्य में सब सुरक्षित थे, पेड़ पौधे भी। प्रभुपाद जी लिखते हैं पेड़ पौधे भी प्रजा हैं, पशु पक्षी सबको सुरक्षा देना चाहिए। तो कथा है कि शिवी महाराज की परीक्षा लेने के लिए अग्नि, इंद्र, तीन देवता आए थे ना परीक्षा लेने के लिए। इंद्र थे अग्नि देवता और ब्रह्मा थे इंद्र थे और अग्नि देव थे। तो इंद्र बाज बने थे और अग्नि देव कबूतर, ऐसे कुछ कबूतर बने परीक्षा लेने के लिए आए। माने इतने वो दानी थे कि देवता लोग भी परीक्षा लेने के लिए आते थे। उनके दान के विषय में इतनी महिमा थी कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी प्रशंसा करते थे। तो इंद्र परीक्षा लेने के लिए आए थे, इंद्र बाज पक्षी बने थे और अग्नि कबूतर बने थे। पूरा मुझे ध्यान नहीं है कि इंद्र थे कि अग्नि देव थे। तो वो कबूतर का पीछा करते हुए बाज पक्षी, आ कबूतर आ गया शिवी महाराज के शरण में कि मेरी रक्षा कीजिए। बाद में बाज पक्षी आ बोला कि ये मेरा आहार है, जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जैसे गाय का घास आहार है, शेर का जंगली जानवर आहार है, हम लोग फल फूल खाते हैं वो भी तो जीव है, चना है, मूंग है, चावल, उसमें भी जीव है। चने को आप अंकुरित करते हैं तो उसमें अंकुरित पंखुड़ियां आ जाती हैं, जीव है तभी तो। हर जीव जीव का भोजन, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो बाज पक्षी ने कहा कि ये मेरा आहार है, इसको छोड़िए। और कबूतर कह रहा था कि हमारी रक्षा कीजिए शिव महाराज से। शिव महाराज ने बाज पक्षी से कहा कि इसके बराबर तुम मांस ले लो, ठीक है। तो तराजू पर कबूतर को रखे और अपने शरीर का मांस काट करके कि कबूतर के शरीर के बराबर मैं अपना मांस दे दूंगा, लेकिन इसको, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब कोई शरण में आ गया है, रक्षा के लिए बात कह रहा है कि हमारी रक्षा कीजिए, तो वो कबूतर तो कोई समान कबूतर नहीं था, तो देवता लोग ही आए थे, इंद्र आए थे परीक्षा लेने के लिए। अपने शरीर का मांस काट रहे थे, तराजू पर चढ़ रहे, लेकिन वो तुल नहीं रहा था। पूरा जांग का मांस काटते गए काटते गए, अंततः नहीं तुल रहा था, तो अपने आप को ही तुला में बैठा दिए। आप शरीर ही तुला के दूसरे तो बैठ गए। अंत में इंद्र और देवता लोग प्रसन्न हो गए, अपने स्वरूप में आए, बोले कि यह वास्तव में दानी है। शिवी दधीची, दधीची ने भी देखिए अपना शरीर दान कर दिया था देवताओं के कार्य के लिए। तो हमारी वैदिक सभ्यता में अनेक दृष्टांत हैं, शिवी दधीचि हरिचंद, राजा रंती देव, अनेक उदाहरण हैं जो दूसरे के लिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि जनता के लाभ के लिए कार्य करे, जनता के लाभ के लिए कार्य करना है। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कार्य किया है जनता के लाभ के लिए, जनता को कृष्ण भावना भावित करने के लिए प्रभुपाद जी ने कार्य किया है, पूरे विश्व मानव समुदाय के लिए प्रभुपाद जी ने एक अद्भुत कार्य किया है। तो यही है वैदिक सभ्यता, यानी कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं खा पी लिया हूँ, मैं अच्छा पहन लिया हूँ, अच्छा रूम ले लिया हूँ, बस सब ठीक है, मैं ठीक हूँ तो पूरा आश्रम ठीक है। नहीं, सबके विषय में जानना चाहिए कि किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या ये है ना? जानना चाहिए। पहले के राजा लोग निकलते थे प्रजा का खबर लेने के लिए कि प्रजा को क्या जरूरत है, तो आश्रम में भी तो कम से कम हम लोग को जानना चाहिए किसको क्या जरूरत है, किसको क्या है, यानी कि हम ठीक हैं तो सब ठीक ही होंगे। एक भोजपुरी में कहा था कि एक नाई था तो राजा के पास जाता था, तो राजा एक दिन नाई से पूछे कि प्रजा का क्या हालचाल है, प्रजा कैसे है, कोई तकलीफ है क्या? तो नाई ने कहा कि मत पूछिए, प्रजा बहुत सुखी है, सब लोग दूध भात खा रहे हैं, किसी को कोई कमी नहीं। नाई लोग हमेशा हर जगह घूमते हैं ना, नाई और ब्राह्मण हर जगह घूमते हैं पूजा के लिए या निमंत्रण के लिए, तो हर जगह का उनको खबर रहता है। नाई को आज का नाई नहीं कि सैलून में दाढ़ी बना, नहीं, पहले नाई लोग गांव गांव में जाते थे, कई गांव का उनका ये होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, हर गांव में हर घर में जाते थे दाढ़ी बनाने के लिए, तो हर जगह की खबर उनको लगती थी। और ब्राह्मण भी हर जगह जाते थे पूजा करने, कई गांवों में जाते थे, तो उनको भी खबर रहता था। पहले मोबाइल तो नहीं था ना कि हर जगह का खबर, या इंटरनेट नहीं था कि खबर तुरंत आ जाता है, तो नहीं था। तो नाई से राजा पूछे कि भाई हर जगह जाते हो दाढ़ी बनाने बाल बनाने के लिए, तो प्रजा में क्या चल रहा है? तो कहा कि प्रजा बहुत सुखी है राजा जी, सब लोग दूध भात खा रहे हैं। तो राजा मंत्री से पूछे कि भाई बड़ा अच्छा नाई ने अच्छा सूचना दिया कि सब लोग बहुत सुखी हैं, सब लोग दूध भात ही खा रहे हैं, तो वास्तविकता है क्या? मंत्री कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये इसके पास एक गाय है, ब्याई है, दूध देती है, ये खा रहा है तो समझ रहा है पूरा दुनिया ही दूध भात खा रहा है। तो राजा कहे कि अच्छा गलत सूचना दे रहा है। तो राजा अपने सिपाहियों से कहे कि उसके गाय को ले आओ आप लोग। राजा के सिपाही गए उसके यहाँ, जो गाय थी उसको रात में खोलकर ले आए। कुछ समय के बाद नाई फिर राजा का हजाम बनाने के लिए आया, तो राजा पूछे क्या प्रजा का क्या हाल है, प्रजा सुखी है? नाई ने कहा कि मत पूछिए राजा साहब, प्रजा बहुत दुखी है, प्रजा खाए बिना मर रही है आपके राज्य में। क्या बताऊं बात, बहुत तकलीफ है, आप कुछ करिए, बहुत चोरी बढ़ गया है, आप राजा हैं ध्यान दीजिए, हमारी गाय भी रात को कोई चोरी करके ले गया, सब राजा ने सोचा। तो हमारी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, मनुष्य जो है दूसरे के लिए रोड बनवाते थे, कम से कम कुछ नहीं तो अपने घर के सामने अच्छा रास्ता लोग बना देते थे। अपने अपने घर के सामने सब लोग अच्छा रास्ता बना देंगे तो अपने आप रोड बन जाएगा। पहले लोग ऐसा ही करते थे, अपने घर के दूरी 100 मीटर तक, 100 गज तक लोग रोड बना देते थे। आगे का वो अपने घर के सामने बना देता था, रोड बन जाता था। एक दिन में गांव के चारों तरफ रोड बन जाते थे, हम अपने गांव में देखे हैं। एक दिन सूचना होता था कि आज घर घर से एक एक आदमी आएंगे। बरसात में मिट्टी के रास्ते टूट जाते थे तो घर से एक एक आदमी जाता था, कुदाल खांची टोकरी कुदाल लेकर के, और दिन भर में गांव के चारों तरफ का जो मिट्टी का रोड था बन जाता था। तो हर आदमी अपने घर के सामने का रास्ता बनाता था, पेड़ पौधा लगाता था। आपके घर के सामने जो रोड गया तो उसके इर्द गिर्द में पेड़ पौधे लोग लगाते थे। रोड बनाना, रोड के चारों तरफ दोनों किनारे छायादार पेड़ लगाना, प्याऊ की व्यवस्था करना, जगह जगह लोग पीने का मटका लोग रखते थे गर्मी के दिनों में, कुआं खुदवाते थे, जो पैसे वाले हैं कुआं खुदवाना, तालाब खुदवा देना, पशु पक्षी लोग मनुष्य लोग पानी पिएंगे, और सराय बनाना, धर्मशाला बनाना। धर्मशाला लोग शहरों में गांव में भी होता था, कोई लोग आ गया तो उसको रहने के लिए, धर्मशाला में खाने के लिए रहने के लिए फ्री होता था। ये सब लोग करते थे। सार्वजनिक कुएं खुदवाए जिसे हर एक को बिना किसी कठिनाई के जल मिल सके। तो नंद महाराज ब्रजवासी समेत ये लोग अपने बुद्धगार को व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग पुण्य कार्य किए होंगे, दान दिए होंगे, वृक्ष लगवाए होंगे, जरूरतमंदों की सहायता की होंगी, इसीलिए उस पुण्य के चलते ये बालक जो है मृत्यु के मुख में जाकर वापस आ गया। तो गृहस्थ को सुखी जीवन बिताने के लिए, बल बच्चों की प्रगति के लिए भी पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए, कुछ समाज में काम करना चाहिए, जिससे उसका पारिवारिक जीवन भी सुखमय होता है। दान करने से क्या होता है, वो शुद्धि होता है। ये सब कार्य करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। धन उपार्जन करने में पाप होता है। कोई भी आदमी धन खेती करता है तो बहुत सारे जीव जंतु मर भी जाते हैं, तो धन उपार्जन करने में बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं, अनजाने में भी कुछ पाप हो जाते हैं। से झाड़ू लगाने में, आग जलाने में, मसाला पीसने में, धान कूटने में बहुत सारे जीव मरते हैं, खेती जोतने में, खेत जोतने में, थ्रेसिंग करने में, चावल हम लोग धोते हैं पकाने से पहले, कितने जीव मर जाते हैं। चावल में सफेद सफेद कीड़े होते हैं या एक काली काली कीड़ी होती है, लोग धोते हैं तो हजारों कीड़े पानी में बहकर मर जाते हैं। तो कोई भी कार्य करने में गृहस्थ से पंच शून्य, 5 अपराध होता ही है, इसलिए उसके लिए यज्ञ दान तप कहा गया है। तो धन कमाने में पाप होता है तो उसको शुद्धि के लिए ये सब कार्य करना चाहिए। लोग गाय के लिए निकालते थे गोग्रास, या ब्राह्मण को निकालते थे, या मंदिर के लिए लोग निकालते थे। हम लोग किसान के घर के हैं तो जब किसान के यहाँ जब धान का फसल तैयार होता था, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, जब धान का फसल तैयार हो जाता था तो निकाला जाता था, अंगऊ उसको हमारे यहाँ बोलते हैं, अंगऊ। एक उपरहिता जो गुरुजी हैं, ब्राह्मण उपरहित होते हैं ना, उनके लिए निकाला जाता था, और मंदिर के लिए ठाकुर बाड़ी के लिए निकाला जाता था, नाई के लिए, धोबी के लिए, वो भी कपड़ा धोता है नाई बाल में, उसके लिए भी निकाला जाता था। कुछ बोझा निकाले जाते थे और फसल भी, अनाज तैयार होने पर अनाज भी। मंदिर है तो उसके लिए लोग निकाल देते हैं, ठाकुर बाड़ी बोलते थे, और पुरोहिता के लिए, ब्राह्मण के लिए जो कुल गुरु हैं, उपरोहिता हैं, उनके लिए निकाला जाता था। तो ये उससे शुद्धि होता है। धन कमाने में जो पाप हुआ है, अनजाने में भी, खेत जोतने में, कीटनाशक दवाई छिड़काव करने में, तो उसका शुद्धि होता है। जैसे हम प्रतिदिन दो बार स्नान करते हैं शरीर शुद्धि के लिए, स्नान करते हैं कि नहीं, शुद्धि के लिए, कपड़ा धोते हैं शुद्धि के लिए, उसी तरह धन कमाने में जो पाप होते हैं उसे दान करने से, जग करने से, तपस्या करने से और भगवान का भजन करने से शुद्धि होता है। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप ये करना ही चाहिए, न त्याज्यम, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी को भी, आपके पास पैसे हैं तो लोग यात्रा में जाते हैं तो दान करना, या किसी ब्रह्मचारी के पास नहीं है तो उसको सहायता करना, हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि पावनानी मनीषिणाम, यज्ञ दान तपह कर्म पावनानी मनीषिणाम, मनीषिणा मतलब महात्माओं को भी पवित्र करता है, अर्थात बड़े बड़े महात्मा भी यज्ञ दान तप करते हैं। हम लोग वृंदावन में देखते हैं अनेक साधु हैं, उनके आश्रम में भंडारा चलता है और भंडारा में कंबल है, कमंडल है, जूता है, छाता है, मिलता है। हम बरसाने में थे तो एक महीने थे तो जाते थे भंडारा में तो खाने के बाद लोग दक्षिणा देते थे, कहीं कंबल मिल रहा है, कहीं कमंडल, जूता, छाता, साबुन, अगरबत्ती, ये सब मिलते हैं। तो महात्माओं को भी दान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल लेना बैंक नहीं होना चाहिए, हाँ जो ऐसा लेते जाए नहीं, उसको दो भी, आपके पास ज्यादा हो गया तो उसको दान भी करो। ये यज्ञ दान और तप महात्माओं को भी पवित्र करता है, पावनानी मनीषिणाम, इसलिए हर आदमी को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। था स्थिति, अवसर मिला, कोई आ गया, कोई महात्मा आ गया, कभी रामानंदी, कभी श्री वैष्णव, दूसरे आश्रम के भी महात्मा आते हैं। से हम जब आश्रम का देखते थे तो अयोध्या से और नासिक से महात्मा आए तो बोले कि हम लोग को वस्त्र नहीं है, दे दीजिए। प्राय आते थे, साल में एक दो बार आते थे लोग, तो हम देते थे, बांटते थे, कुछ दक्षिणा भी उनको देना चाहिए, देना चाहिए। कोई महात्मा आ गया बाहर का है, उसको जरूरत है तो देने का प्रयास करना चाहिए, वस्त्र दीजिए, कुछ धन दक्षिणा दीजिए, उसको प्रसाद खिलाइए, उस रुकना चाहता है तो उसको रुकने की व्यवस्था कीजिए। जैसे हम कभी जाते हैं दूसरे के आश्रमों में तो क्या अपेक्षा रखते हैं, जैसे हम लोग हरिद्वार गए, वृंदावन गए या नैमिषारण्य गए, तो कोई आश्रम में जाते हैं तो क्या अपेक्षा लेकर जाते हैं कि महात्मा लोग रखेंगे, प्रसाद अच्छा खिलाएंगे, दान देंगे, यही ना अपेक्षा रखते हैं। अब ऐसे हरिद्वार में गए, कहीं रहने का जगह नहीं है, आश्रम में जाते हैं यही अपेक्षा लेकर कि वो लोग, महात्मा लोग एक रूम दे देंगे, खाने का व्यवस्था कर देंगे, और मन में भी है ताकि दक्षिणा भी दे देंगे तो और अच्छा है, मन में तो रहता ही है। तो मान लीजिए यहां भी अगर कोई आता है तो कुछ अपेक्षा लेकर आता होगा, है कि नहीं, कि चलो आश्रम है तो वहां रहने को मिलेगा। एक बार महात्मा लोग आए थे यहाँ तो बोले कि यहाँ साधु सेवा नहीं होता है साधु सेवा नहीं होता है, मतलब कि क्या क्या चाहिए आपको, आ तो हम लोग एक दो दिन यहाँ रुकना चाहते हैं, तो रुकेंगे तो उनको प्रसाद पवाई, यही पुण्य है। यथा सड़कें बनवाए, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए जिससे लोग छाया में चल सके, सार्वजनिक कुएं खुदवाए जिसे हर एक को बिना किसी कठिनाई के जल मिल सके। अब तो नल हो गया है, ये हो गया, पहले कुआं में लोग पानी ये करते थे, आज भी गांव में कुओं का उपयोग होता है, हमारे यहाँ भी तक कुएं का उपयोग हो ही रहा है ना, कुएं का पानी ही जाता है ना आश्रम में, कुआं से पानी जाता है। तपस्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को बस में करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तपस्या क्या है, तब ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, जप करना, एकादशी को उपवास करना, जो भी मतलब तप है, तीर्थयाटन करना, तीर्थयातना में जो भी तपस्या उसको सहन करना, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करना, पैदल चलने में कठिनाई तो उसको सहन करना, जैसे पद यात्रा है, परिक्रमा है, तो नंगे पांव चलना है, वो तप है, वो सब करना चाहिए। वृंदावन में बहुत लोग जाते हैं तो सूट बूट चप्पल पहनते हैं, कुछ लोग हैं कि वो ब्रज में रहेंगे तो चप्पल नहीं पहनेंगे, बहुत ऐसे भक्त हैं कि ब्रज में जितना समय रहेंगे संकल्प लेते हैं चप्पल नहीं पहनना है। तपस्या करनी चाहिए, उसी के साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा तप है। इस तरह पवित्र बन जाता है आदमी और उसी के फलस्वरूप भौतिक जीवन में सुखी हो सकता है। ये नंद महाराज और गोकुल वासियों का उद्गार है कि शायद यह बच्चा जो है मौत के मुंह में जाकर वापस आ गया है, तो हम लोग पुण्य किए होंगे, पुण्य के प्रभाव से ही ये बालक हम लोगों को आनंद बढ़ा रहा है, नहीं तो बहुत दुखी होते। अगर बच्चा मर जाता तो कितना दुख होता। नंद महाराज का एक ही पुत्र हुआ था, वो भी बुढ़ापे में, किसी गृहस्थ को मान लीजिए कोई संतान नहीं, एक बच्चा हुआ, बहुत समय बीतने के बाद एक बच्चा हुआ, वो भी मर जाए तो कितना पूरा समुदाय दुखी होगा, पूरा गांव के लोग दुखी हो जाएंगे कि बहुत उम्र में एक बच्चा भी हुआ तो भी मर गया, सब लोग शोकाकुल हो जाएंगे। अगर कृष्ण को मार दिया होता तृणावर्त, तो पूरा गोकुल जो है शोक के समुद्र में डूब जाता कि नहीं। लेकिन बच्चा सकुशल बच गया, इसलिए ब्रजवासी लोग, गोकुल के वासी लोग, महाबन के जितने भी निवासी थे खुशी मना रहे थे, अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे कि हम लोग पुण्य किए हैं, तो पुण्य के चलते ही बच्चा जो है बच गया है। तो जिसके जीवन में पुण्य है वो भयंकर बीमारी से, मौत से भी बच जाता है, अनेक भयंकर संकटों से भी बच जाता है, पुण्य रक्षा करता है। यही इस श्लोक में ही नंद महाराज ने सहपाठियों के साथ भाव व्यक्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बोलिए बलदेव चंद्र प्रभु। बलदेव चंद्र क्या प्रश्न बोलिए, आप बिना माइक के भी बोल सकते हो, बोलो।
उसके नीचे बैठने से तब जो पेड़ गिर गया हमारा मंदिर का, आपने बताया कि वो भगवान का स्वरूप होता है, उससे जप करने से, ध्यान करने से और बीमारी भी ठीक होता है।
अब बचाने का प्रयास करना चाहिए था।
और दूसरा पॉइंट है जो बरगद का पेड़ रहता है, कोई उसका कोई फायदा रहता है,
कोई मान लीजिए बीमार होता है तो हम उसकी सहायता करते हैं ना, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी सुरक्षा का, उसको ये नहीं कि मर रहा है तो छोड़ दो और मर जाए। तो पेड़ को भी उसका इलाज कराना चाहिए, पेड़ के जल जड़ में कीड़े लग गए हैं बहुत जगह, उनका दवाई डालना चाहिए।
मगर उसके नीचे बैठने से बहुत सारा बीमारी भी ठीक होता है, उसका जड़ भी बहुत काम का है ना?
उसका जड़, उसका पत्ता, उसका छाल को भी पीस करके उबाल कर पीने से पेट की बहुत सारा सौ करोड़ बीमारी का मैं पढ़ा था दवाई है।
उसी तरह से बरगद का पेड़ का उसका कुछ महत्व रहेगा?
बरगद का पेड़ भी बहुत सारी दवाइयों के काम में आता है,
भगवान का भी स्वरूप है ना।
बरगद का जो दूध है, दूध को लोग बतासे पर ले करके खाते थे, उससे गला की बीमारी, पेट की बीमारी, धात की बीमारी, अनेक बीमारियों का। हम लोग बचपन में आँख आता था तो बड़ का दूध आँख में डालते थे हम लोग, बरगद का बहुत सा, उसके बीज का भी दवाई बनता है, उसके पत्ती का भी दवाई बनता है, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। बचपन में हम लोग को आँख जब लाल लाल हो जाता था ना, आँख खाना बोलते हैं, तो बरगद का ही दूध आँख में डालते थे। किसी को पेट की बीमारी हो और भी कोई असाध बीमारी हो तो बताशा होता है ना, उसके ऊपर बरगद का दूध जो है ये करके खाने से बहुत फायदा होता है। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, हम ध्यान याद नहीं है, ये सब वृक्ष बहुत मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। पीपल है, बरगद है, आमला है, तुलसी है, ये सब हमारे मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, इनका हर चीज काम में आता है। ऐसा कहा भी गया कि पीपल हमेशा ऑक्सीजन देता है 24 आवर्स। पीपल जो है और बरगद तुलसी ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। एक पीपल का वृक्ष इतना ऑक्सीजन देता है कि 1 किलोमीटर तक वायु को प्रदूषित होने से बचाता है, प्रदूषण को रोकता है, बीमारियों को रोकता है। तुलसी भी, ये सब बहुत मतलब उपयोगी हैं, देवता हैं, वृक्ष नहीं हैं, सब देव तुल्य हैं। क्या बोले हो, क्या क्या बोले? माइक में बोलिए।
हरे कृष्णा, आपने बताया कि पहले के जो राजा लोग होते थे प्रजा लोग को देखभाल करते थे, मतलब किस तरह से भी, तो उस आज का जमाने में तो आप बताएंगे तो राजा लोग प्रजा लोग को देखने जाएंगे आश्रम में क्या कर रहे हैं?
तो बता ही दिया था ना कि आश्रम में जो है तो जो लोग राजा के पद पर हैं वो देखना चाहिए।
तो आप बताने चाहिए,
जैसे कोई कोई भक्त लोग हैं एक एक रूम में 4-4 लोग रह रहे हैं, कोई ऊपर बेड पर जाता है तो कंपन होता है, हिलता है, और कोई लोग हैं कि एक रूम में एक भक्त हैं, तो उसको एक आदमी को और एकोमोडेट करना चाहिए। जो लोग सिंगल रह रहे हैं आश्रम में उनको कम से कम एक भक्त और अपने साथ एकोमोडेट करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे नियम बना था कि जो पुराने होंगे 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, किसी रूम में 4 हैं, अगर ये है तो जो लोग सिंगल रहे उनको एक भक्त को अपने रूम में रखना चाहिए। ये है एक सहयोग की भावना, ये नहीं कि आप एक रूम में अकेले रह रहे हैं और किसी रूम में 3 हैं वो परेशान है, 4 हैं। तो जो लोग सिंगल रूम में हैं उनको कम से कम एक ब्रह्मचारी को अपने रूम में साथ रखना चाहिए। अब जो रहते होंगे उनसे कहना भी चाहिए कि आप क्यों सिंगल रूम में रह रहे हैं, आश्रम में और लोग कैसे रह रहे हैं, आप एक भक्त को रखिए साथ में। कि नहीं, आप बोलिए। बाहर से जो लोग आते हैं, हाँ, श्री हरि प्रभु करें कि जो भी बाहर से आते हैं अतिथि, अतिथि देवो भव, साधु हो चाहे ऐसे भी कोई आ गया और उसको रुकना हो कुछ परेशानी में तो उसकी सहायता करनी चाहिए। बाहर के साधु लोग गांजा भी पीते हैं, वैसे साधु भी आ गए तो उनको रुकना चाहते हैं तो उनको आश्रय देना चाहिए, उनको प्रसाद है रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम बाहर जाते हैं गांजा पीने वालों के यहीं तो रहते हैं। हम हरिद्वार में गए थे तो जो आश्रम में गए थे वो गांजा पीने वाले थे, लेकिन बहुत अच्छा थे वो लोग। आश्रम में दूध की व्यवस्था करना और बहुत अच्छा रूम लोग दिए थे, बहुत सुंदर रहने की व्यवस्था किए थे। वो गांजा पीते हैं क्या करते हैं, इससे क्या मतलब है, वो आए हैं तो उनकी सहायता करना, उनको रहने की खाने की व्यवस्था दीजिए। अब उसी गांजा वाले के यहाँ जाते हैं तो आप रहते हैं, खाते हैं उनके यहाँ, और आ गए तो गांजा पीने वाले हो गए।
मना है ना, प्रभुपाद जी मना किया कि ये गांजा जो पीते है बीड़ी तम्बाकू
सुपारी, उनको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ गांजा मत पीजिएगा। वो लोग आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपको गांजा पीना नहीं है। अगर गांजा पीने वाला साधु आता है तो हम बताते हैं कि हमारे आश्रम का नियम है कि नो स्मोकिंग, आप यहाँ गांजा नहीं पी सकते हैं, यहाँ के नियम के अनुसार आप रहिए, आपको सुविधा दी जाएगी। से हर धर्मशाला में गेस्ट हाउस का नियम होता है, वहाँ नियम लिखा रहता है कि यहाँ रहकर कुछ आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, बाहर से चाय कॉफी नहीं ला सकते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, आश्रम में रहकर कुकिंग नहीं कर सकते। ऐसा नियम होता है ना बहुत जगह, हर जगह जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ रहता है। आश्रम में जाते समय स्विच ऑफ करके जाएंगे, नल का पानी खुला छोड़कर नहीं जाएंगे, नियम होता है। आश्रम में मादक द्रव्य का सेवन निषेध है, हर जगह पर ही रहता है। जितने भी धार्मिक आश्रम है वहाँ ये सब रहता है कि नो स्मोकिंग होता है। तो यहाँ अभी कोई साधु आता है तो हम बताते थे कि आप यहाँ गांजा नहीं पी सकते हैं, बीड़ी नहीं पी सकते हैं, यहाँ का ये नियम है, ये नियम पालन करेंगे तो आप रह सकते हैं। हम लोग भी जहाँ जाते हैं वृंदावन में भी, तो आश्रमों में लिखा है कि मादक द्रव्य किसी प्रकार का बीड़ी तंबाकू पीना निषेध है, आश्रम में तोड़ फोड़ करना निषेध है, आप बाहर जाते हैं तो पानी का नल बंद करके स्विच फैन लाइट का स्विच ऑफ करके जाएंगे। जहाँ के जो नियम है वो नियम तो पालन ही करना है। अतिथि आए हैं तो उनको नियम हम बता सकते हैं कि यहाँ का ये नियम है, इतना बजे प्रसाद होता है, इतना बजे आप जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, इतना बजे मंगल आरती में आपको आना है, ये सब नियम तो हम लोग बताते ही हैं। और बाहर के आश्रमों में भी जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी नियम है कि आप यहाँ रुके हैं तो इतना बजे आरती में आना है, हर जगह का कुछ ना कुछ नियम होता है। तो नियम के साथ में आपको रहना है, या कोई आए तो उसको भी बताना है, और रखने के लिए जगह है तो रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की।